समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार नेहा, हेलो एंड गुड आफ्टरनून, गुड डे एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 FM। एज नेहा टोल्ड यू, आई एम शगुन चोपड़ा एंड टुडे वी आर गोना हैव अ गुड टाइम विद नेहा एंड यू ऑल लिसनर्स। एंड वी हैव लाइंड अप फॉर यू न्यूज। Our discussion segment, Dateline India, not just has one topic to discuss about, but two. We have reports, we have capsules, and we'll be paying our tributes. And there is a lot more. So stay tuned, listeners. Be with us for the next half an hour. But first, we'll begin with the headlines. 3 people killed due to cloudburst in Seri Bagna area of Jammu and Kashmir's Ramban district. 40 residential houses damaged and over 100 people rescued after flash flood hits Dharamkund village of the district.
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, भारत का विदेशी मुद्रा बाजार पिछले 4 वर्षों में 2 गुना होकर 32 बिलियन से बढ़कर 60 बिलियन डॉलर हुआ।
US वाइस प्रेसिडेंट JD Vance टू अराइव इन न्यू दिल्ली टुमारो ऑन अ 4-डे विजिट टू इंडिया।
ईसा मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक ईस्टर आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है।
In squash, India's Vee Chotrani and Anahat Singh qualify for World Championships to be held in United States next month.
IPL T20 क्रिकेट में शाम को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगी।
एंड नाउ लिसनर्स, इट इज टाइम फॉर आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया एंड टुडे वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट वेव्स, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। वेल फर्स्ट टॉकिंग अबाउट यूनियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, ही सेड that the world of creators and their economy is going through a fundamental change. Interacting with the news media in New Delhi yesterday, ahead of the maiden World Audio Visual and Entertainment Summit, WAVES, Mr. Vaishnav said that with the advent of technology, the old model is giving way to the new model, which is creating opportunities as well as challenges, which is in fact very true.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मीडिया जगत का स्वरूप बदल रहा है और देश को नए मॉडल के अनुरूप सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि क्रिएटर्स की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। वेव्स खुद को मीडिया और मनोरंजन के लिए वैश्विक मंच के रूप में विकसित करना चाहता है, ठीक उसी तरह जैसे दावोस आर्थिक नीतियों के लिए वैश्विक मंच के रूप में काम करता है।
India's creative economy has received an overwhelming boost with more than 1 lakh registrations. Well, a whopping 1 lakh registrations for WAVE 2025. Well, this is such a brilliant response, Neha. Mr. Vaishnav, he said, the top innovators will be honored with awards, celebrating their contributions to the evolving global media and entertainment landscape.
श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार क्रिएटर्स को दुनिया से जोड़ने की कोशिश कर रही है। मंत्री ने कहा कि वेव्स क्रिएटर्स खरीदारों और बाजारों के बीच स्केलेबल रचनात्मक समाधानों के लिए एक वैश्विक कनेक्टर के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि वेव्स के माध्यम से खरीदारों और विक्रेताओं को एक मंच मिल रहा है जहां क्रिएटर्स अपना कंटेंट पेश कर सकते हैं और फर्म गुणवत्तापूर्ण रचनात्मक कार्य प्राप्त कर सकते हैं।
Now let's talk about what Secretary Ministry of Information and Broadcasting, what he said. He highlighted, Sanjay Jaju, he highlighted the significance of collective dialogue in shaping the future of the media landscape. He emphasized the ministry's commitment to engaging with stakeholders across platforms, and he also appreciated the active participation of media organizations in the lead up to WAVES 2025.
वहीं इस परिचर्चा में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार मीडिया के लगभग 20 मीडिया घरानों ने भी भाग लिया।
वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग टू नोट। एंड लिसनर्स, देयर इज वन मोर थिंग। डू यू नो दैट इंडिया ऑक्यूपाइज अ डोमिनेंट पोजीशन इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट विद टैलेंट्स व्हिच इज स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफीज ऑफ द कंट्री, क्रिएटिंग कंपेलिंग कंटेंट्स थ्रू इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। एंड देयर इज इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट इट हियर दैट इंडिया इज पोइज्ड टू बिकम वन ऑफ द लीडर्स in media and entertainment sector. Well, World Audio Visual and Entertainment Summit, this will promote India as one-stop destination for content creation, investment destination, and also leverage create in India opportunities as well as for ग्लोबल आउटरीच।
जी शगुन, वेव शिखर सम्मेलन मीडिया और मनोरंजन उद्योग में चर्चा, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। यह कार्यक्रम उद्योग के नेताओं, हितधारकों और नव प्रवर्तकों को संभावनाओं, चुनौतियों पर चर्चा करने, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने और क्षेत्र के भविष्य का प्रभावित करने के लिए भी एक साथ लाएगा।
जी, now let me focus on the objectives behind this, the overall vision behind basically Waves 2025. First, it is to establish Waves as a leading global platform for the media and entertainment industry, positioning India as a powerhouse for creativity, for innovation and also for content creation, which is dominant today. Content creation is in demand nowadays a lot.
इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्यों में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देना, तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करना और मीडिया एवं मनोरंजन पारिस्थितिक तंत्र का विकास करना शामिल है।
Now Neha, let us tell our listeners the activities that make up the Waves 2025 summit. Number one, conference sessions, which includes keynotes, panel discussions. Second one is exhibitions showcasing media and entertainment innovations. Also, third one here is Waves Bazaar, media marketplace. The fourth one is WaveX startup pitching sessions. Masterclasses and workshops are also there to look forward to. Create an India Challenge finale. Networking events will be there. Cultural evenings and performances. All of this is included in Waves 2025 Summit. All these events. The creative economy, which we have been talking about, is a knowledge-based sector involving the creation first, production second and distribution of creative goods and services.
जी हाँ, इसमें विज्ञापन, वास्तुकला, कला, फैशन, फिल्म, संगीत, फोटोग्राफी, प्रकाशन, अनुसंधान एवं विकास तथा सॉफ्टवेयर जैसे उद्योग भी शामिल है।
Right, and let us tell our listeners the value of the of India's creative industry. It is valued at a whopping $30 billion and employs nearly 8% of the country's working population. And our listeners, you will be even more surprised to know that in 2023, India had over 100 million content creators. 100 million.
Wow. मुझे यकीन है कि हमारे श्रोताओं को यह एहसास हो गया होगा कि वेव्स महज एक सम्मेलन नहीं है, बल्कि ये मीडिया और मनोरंजन के भविष्य का भी एक पोर्टल है।
वेव्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप वाइल्ड कार्ड शो डाउन, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट, वाज हेल्ड इन मुंबई यस्टरडे। द ब्लॉकबस्टर प्री इवेंट सॉ ओवर 50 टॉप टियर कॉस्प्लेयर्स फ्रॉम अक्रॉस द रीजन लाइटिंग अप द स्टेज विद हाई ऑक्टेन परफॉर्मेंसेस, स्क्रीन एक्यूरेट कॉस्ट्यूम्स एंड इलेक्ट्रीफाइंग फैंडम एनर्जी। And to know more about this, our correspondent Pratna spoke to one of the jury members, Ajay Krishna. Have a listen.
Could you please share some insights about the Waves Cosplay Championship Wildcard Showdown that happened yesterday?
At Waves Cosplay Championship Showdown at the Thakur College of Science and Commerce, this particular event, the Wildcard Showdown, was nothing short of phenomenal performance by the cosplayers, and also the vibrant performance they have exhibited on the stage was jaw-dropping to the audience as well as the jury of ourselves. The level of detailing in their costumes was so cool, and also it was so powerful. Made by the people, and it was like stuck all the people and the audience or the jury, like it was more than just a competition, it was like a tribute to be seen from the cosplayers community to the culture of India and as well as the pop culture that exists all over the world. In fact,
please tell us about the participants, the backgrounds and what stood out in the show. Really,
to be honest, this event we haven't expected this kind of variety of audience coming from different professional lives they do have. But to show their love for the cosplayer culture and that all, and especially in India, it diversified among the participants when we see like you have been a doctor in their profession, but they came up and showed up in a different character here cosplaying. And also we have seen in person who actually a game developer himself who played games as a kid and then become a game developer. Now he's cosplaying as a game character. That was even made us to wonder how great this industry was. And the wild card in this especially highlighted the raw and creativity of the art that's actually being not given the stage till today in India. Now I think the waves are going to do that for that.
Thank you, sir.
Well, listeners, now moving on. Today, the festival of Easter is being celebrated across the world.
देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों में ईस्टर उत्सव मनाया जा रहा है. इस दिन को मनाने के लिए चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं. उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आज ईस्टर पर्व के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं.
Yes, Neha, first I will tell you about President's wishes. In a social media post, President Draupadi Murmu, she said that this festival inspires the spirit of new hope and new beginnings. She also added that the teachings of Jesus Christ inspire humanity to follow the path of love and sacrifice.
वहीं अपने संदेश में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ईस्टर ईसा मसीह के पुनरुत्थान के माध्यम से आशा और नवीनीकरण का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि करुणा, क्षमा और सेवा की उनकी शाश्वत शिक्षाएं मानवता को एक सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं.
Prime Minister Narendra Modi, in a social media post, said that this Easter festival is special because the Jubilee year is being observed world over with immense fervor. He prayed that the Easter inspires hope, renewal and compassion in people and hoped for joy and harmony.
श्रोताओं, तो चलिए आपको ले चलते हैं परिक्रमा पर, जैसा कि आपके पसंदीदा शो का भी नाम है. जानते हैं विभिन्न राज्यों में कैसे मनाया जा रहा है ईस्टर.
Well, first, we'll begin with Tamil Nadu. Special church services are being held here since wee hours in Tamil Nadu here. To mark the celebrations today, we have more from our Chennai correspondent. Listen in.
Easter Sunday is also the completion of the 40 days of fasting observed by many Christians all over the world. People express their happiness by celebrating with sumptuous food and all that they renounced for the past 40 days. Churches are decorated with festoons signifying Christ's victory over death. In Tamil Nadu, it is festivity with Easter eggs, hot cross buns and the age-old biryani at most of the houses along with the traditional payasam. Joy, Akashwani, Chennai.
केरल में ईस्टर मनाने के लिए मध्य रात्रि की प्रार्थना के साथ ही सुबह की प्रार्थना में भी भाग लेने के लिए राज्य भर से श्रद्धालु चर्चों में उमड़ पड़े. यह आयोजन प्रार्थना, पश्चाताप और ईसा मसीह के जीवन के अंतिम चरण को याद करने के पवित्र सप्ताह की परिणति का प्रतीक है. पेश है हमारे कोची संवाददाता की यह रिपोर्ट.
Cutting across various denominations, Christians celebrated Easter with traditional zeal and fervor, marking the resurrection of Jesus Christ after crucifixion. Bishops and senior clergymen led the Easter Mass at various churches, exhorting people to remain peaceful and considerate to the deprived and the needy in the society. The celebrations signal the end of a season of renunciation, prayer and contemplation of the sufferings undergone by Jesus Christ for the betterment of humanity. Christian homes prepared traditional feasts as part of the celebrations. Rajmohan, Kochi.
Now let's take you to Mizoram. Well, here Easter Sunday is being observed with joy and full religious fervor and across all parts of the states as well. And our correspondent reports that large number of faithfuls congregated in their respective churches in the morning to welcome the resurrection of Jesus Christ.
Hey, Easter Sunday is being celebrated in Mizoram with religious festivity and enthusiasm. The Presbyterian Synod, the biggest Christian denomination in the state, the Baptist Church of Mizoram, and Salvation Army took to sunrise service in various parts of the state to mark the significance of the solemn occasion. The all-time inspirational Christian hymn, Up From the Grave He Arose, beautifully played by the band party of Salvation Army, reverberated throughout the hills and valley of Mizoram. Community feasts are also being arranged in some localities to welcome the resurrection of Christ. Gindangte, Akashvani News, Aizawl.
कोहिमा में विशेष सूर्योदय और प्रातःकालीन सेवाएं, भजन, प्रार्थना और प्रवचन के साथ आयोजित की गई। चलिए कोहिमा चलते हैं, हमारे कोहिमा संवाददाता की रिपोर्ट।
Easter Sunday in Nagaland is celebrated with deep religious fervor. In the capital city of Kohima, the Kohima Baptist Pastors Fellowship organized a prominent Easter sunrise service or the Resurrection Sunday at the Kohima local ground this morning. The event drew believers from various denominations, uniting them in prayers and hymns to commemorate the resurrection of Jesus Christ. General Secretary of the Nagaland Baptist Church, Council Reverend Dr. Mar Pongana, delivered a message and extended resurrection greetings.
He has risen from the dead. What better news can the believers have than the news after resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ? We are here because He is in our midst. We are alive. Because He is alive.
Throughout the day, churches across Nagaland host special services, baptisms, and fellowship meals. This gathering emphasized themes of renewal, hope, and the transformative power of the resurrection. Governor of Nagaland, Laga Nasant, and Chief Minister Nepurio greeted fellow citizens on the sacred occasion of Easter Sunday. For Parikrama, Asunyo, Akashwani News, Kohima.
Well, let's stretch our boundaries a little in this parikrama and tell you that Russian President Vladimir Putin has declared 30 hours of brief Easter truce against Ukraine. This is set to last until midnight on Sunday.
राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यूक्रेनी पक्ष उनके उदाहरण का अनुसरण करेगा। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम से रूस को यह समझने में मदद मिलेगी कीव की कीव युद्ध विराम के लिए कितना गंभीर है।
Well, of course, now let's move on. And I'm sure, Neha, our listeners must have heard of the popular tradition of Easter, which includes egg hunting and egg decorations. Well, Easter egg. This is a decorated egg used in Easter celebrations. This is a hidden surprise, as a hidden surprise, basically, or extra feature in this particular festival.
जी शगुन, इन अंडों को नए जीवन और उसके साथ आने वाली आशा के प्रतीक के रूप में माना जाता है.
True that, Neha. And the Easter rabbit or Easter bunny is said to lay Easter eggs as well as decorate and hide them. Modern egg hunts often involve real and plastic eggs. The latter, the plastic eggs here I'm talking about, being filled with candies or small toys. Such interesting and funny thing, you know, exciting.
वही आजकल अधिकांश ईस्टर अंडे चॉकलेट से बनाए जाते हैं और रंगीन कागजों से उन्हें ढक दिया जाता है.
True, true. Very massive eggs even today are, you know, made and formed. I have been hearing about it a lot.
ईस्टर की शुभकामनाएं, यह दिन आपको याद दिलाए कि नई शुरुआत हमेशा संभव है.
वेल, हियर्स टू फ्रेश स्टार्ट्स, ब्राइट मॉर्निंग्स एंड द प्रॉमिस ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम अस. हैप्पी ईस्टर.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाता से जानने का कि क्या उनके पास विशेष है. अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही पोषण बेहद जरूरी है. आइए पोषण पखवाड़ा से जुड़े विदर्भ के चंद्रपुर जिले की ये रिपोर्ट सुनते हैं हमारे संवाददाता से.
केंद्र सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश में सातवां पोषण पखवाड़ा शुरू किया गया है। सातवां संस्करण 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाया जाएगा। मातृ एवं शिशु पोषण, लाभार्थियों के लिए डिजिटल सहायता और बचपन में मोटापे से निपटने पर केंद्रित थीम के साथ पोषण पखवाड़े का सातवां संस्करण पोषण संबंधी कल्याण को बढ़ाने के लिए परिणाम आधारित उपायों पर केंद्रित है। इस अभियान के संदर्भ में विदर्भ के चंद्रपुर जिले में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। चंद्रपुर की ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी ज्योति डांगे ने जानकारी देते हुए बताया कि
इस साल के पोषण पंद्रहवाड़े में माता और बालकों का पोषण, लाभार्थी के लिए डिजिटल सुविधा और मोटापा कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कुपोषण को 100% दूर करने के लिए हम केंद्र सरकार के माध्यम से यह पोषण पंद्रहवाड़ा हम मना रहे हैं।
यकीनन कुपोषण से निपटना और सही पोषण का महत्व समझना ये पोषण पखवाड़े का जरूरी हिस्सा है। चंद्रपुर की यह पहल अनुकरणीय मानी जा रही है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
Well, first, beginning with cricket here, in IPL T20 cricket, hosts Mumbai Indians will face Chennai Super Kings this evening. The match will begin at 7:30 p.m. in Wankhede Stadium. And with just 2 wins from 7 matches, Chennai Super Kings languish at the bottom of the table. On the other hand, Mumbai Indians have managed just 3 wins so far. However, they can still hope for a turnaround, so let's stay tuned.
भारत के वीर चोटरानी और अनाहत सिंह ने अगले महीने अमेरिका के शिकागो में होने वाले विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वीर ने मलेशिया में आयोजित एशिया क्वालिफाइंग प्रतियोगिता के पुरुष फाइनल में मलेशिया के अमीशन राज चंद्रन को हराया। वहीं अनाहत ने महिला सिंगल्स के फाइनल में हांगकांग की टोबिट से को पराजित किया।
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember the freedom fighter and maestro of Hindustani classical flute music, Pandit Pannalal Ghosh, who died on the 20th of April 1960. During his young days at Barisal, Pannalal was active in the freedom struggle, and in the formative phase of his career, he also came under the influence of Gurudev Rabindranath Tagore and Qazi Nazrul Islam, who helped instill the nationalistic outlook in him. A disciple of Alauddin Khan, Pannalal is credited with popularizing the flute as a concert instrument in Hindustani classical music and also the pioneer of Indian classical flute.
Pannalal was born on the 24th of July 1911 at Barisal, now in Bangladesh, in a family of musicians. Young Pannalal was highly receptive and absorbed good music from various sources. In 1928, Ghosh became a part of the Indian independence movement. He joined a gymnasium and learnt martial arts, boxing and stick fighting.
As he became more involved in the independence movement, the government started keeping a close watch. He had to flee to Kolkata. His childhood friend and brother-in-law, Anil Biswas, also came to Kolkata due to his political leanings.
In Kolkata, Pannalal honed his musical skills and assisted in music production. In 1940, he moved to Bombay to further expand his music career. He joined the Bombay Talkies film studio and gave music to quite a few popular films. Pannalal also earned fame through his regular broadcasts on All India Radio and his many live performances at music festivals throughout India. His efforts and research has helped the flute gain its current form.
The true patriot that he was, Pannalal Ghosh gave stirring compositions and flute playback for the nationalistic film Andolan in 1951. The movie has actual footage of India's freedom struggle. Speeches and talks of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and many others are included in the narrative of this film.
Pandit Pannalal Ghosh's legacy continues with his many disciples. We salute the great nationalist and music exponent.
We remember Indian National Army member Pirti Singh, who was born on the 20th of April 1914 in Hoshiarpur, Punjab. A soldier in the British Army, he was captured by Japanese forces in 1942 in Singapore. Pirti Singh volunteered to join the Indian National Army on the 1st of March 1942 and fought against the Allied forces in Burma. He was martyred on the battleground in Burma in 1944. We salute the great son of the soil, Pirti Singh.
We pay our tributes to the martyr Mangra Bhagat, who took active part in the Quit India movement in Ranchi, Jharkhand. He was arrested during the protest and sent to Patna Camp Jail on the 15th of September 1942. He died during imprisonment on the 20th of April 1943. We salute the great son of the soil.
We also remember martyr Ahmad Yar Khan, who took part in the First War of Indian Independence in 1857. Khan was a tehsildar of Jalalabad, Uttar Pradesh, and played a prominent role as a Nazim of Jalalabad under the Independence Activists' government. He was captured by the British troops following the defeat of the Independence Activists and executed by hanging on the 20th of April, 1858. We salute the great freedom fighter.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस।
Let's beginning with
शुरुआत करते हैं शकील बदायूनी से। आज शकील बदायूनी की पुण्यतिथि है। शकील बदायूनी एक भारतीय उर्दू कवि, गीतकार और हिंदी और उर्दू भाषा की फिल्मों के गीतकार थे। शकील बदायूनी का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। साल 1961 में फिल्म चौधवी का चांद हो गाने के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शकील बदायूनी ने करीब तीन दशक के फिल्मी जीवन में लगभग 90 फिल्मों के लिए गीत लिखे। उनके फिल्मी सफर पर एक नजर डालने से पता चलता है कि उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में संगीतकार नौशाद के साथ ही की। शकील बदायूनी ने इंसाफ की डगर पे, मधुबन में राधिका नाचे रे, प्यार किया तो डरना क्या जैसे मशहूर गाने लिखे हैं। फिल्मी गीतों की दिलकशी से उर्दू शायरी को लोकप्रिय बनाने वाले शकील कुछ यूं लिखते थे। अब तो खुशी का गम है ना गम की खुशी मुझे, बेहिस बना चुकी है बहुत जिंदगी मुझे। ए मोहब्बत तेरे इंजाम पर रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया।
वेल नाउ मूविंग ऑन, टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग सर्वेपल्ली गोपाल, हिस्टोरियन। वेल सर्वेपल्ली राधा कृष्णन सन। Well, in the world of history, he is one of its erudite and devoted practitioners who served the discipline with rare distinction. He brought exceptional qualities to bear on the writing of history, which make him rank among the best in the world. And like many of his generation, he was deeply influenced by nationalism, both its anti-colonial character and by its inherent civilizational strength.
आज जयंती है चंद्रबली सिंह की। वे एक लेखक होने के साथ साथ उत्कृष्ट कोटि के अनुवादक एवं आलोचक थे। गाजीपुर में जन्मे चंद्रबली सिंह ने लोक दृष्टि, हिंदी साहित्य तथा आलोचना का जनपक्ष नामक शीर्षक से पुस्तक का प्रकाशन किया। चंद्रबली सिंह अंग्रेजी के परम विद्वान होकर भी हिंदी के साधक थे।
Well, today we are also remembering a musician, jazz vibraphonist, percussionist and band leader. I'm talking about Lionel Leo Hampton. He worked with jazz musicians such as Quincy Jones, Benny Goodman, and he was also inducted into the Alabama Jazz Hall of Fame. And for you listeners, this is what I've chosen for you to listen to.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करने का।
Well, listeners, thank you so much for tuning in. We hope you have a wonderful day ahead. What is left for you all to have and reminisce and to also learn and to have a wonderful way of inspiring yourself and motivating yourself. Well, thank you so much again for tuning in. This is Shagun Chopra with Neha Goswami here.
Namaskar.